आचार्य प्रथम वर्ष के बच्चों का स्वागत है इस कक्षा में। व्याकरण भूषण सारः के बारे में आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको ये सबसे पहले जानकारी लेनी है कि व्याकरण भूषण सारः यह जो नामकरण है पुस्तक का, इसका क्या अभिप्राय है। तो व्याकरण को जो पढ़ने वाले होते हैं अथवा व्याकरण को जो जानने वाले होते हैं उनको व्याकरण कहा जाता है। जैसे आप व्याकरण पढ़ते हैं तो आप भी व्याकरण हो गए, और मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ, मैं व्याकरण जानता हूँ, तो मुझे भी व्याकरण कहा जाएगा। यद्यपि दोनों को व्याकरण कहा जाता है, लेकिन व्याकरण शब्द जो है ना प्रसिद्ध है व्याकरण के जानकार के रूप में। तो व्याकरण मतलब व्याकरण के जानकार, व्याकरण के ज्ञाता। उसके बाद है व्याकरण भूषण। भूषण मतलब आभूषण होता है, आप जानते ही हैं। आभूषण क्या करता है तो शरीर को विभूषित करता है। ऐसे ही व्याकरण को विभूषित करने वाला जो भूषण है, तो व्याकरण को कौन सा आभूषण विभूषित करेगा, तो ये सिद्धांत जो होता है ना, प्रत्येक शास्त्र का अपना अपना सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत ही जो है व्याकरण को विभूषित करता है। इसीलिए यहाँ पर भूषण का अर्थ जो है वो सिद्धांत लिया जाएगा। तो व्याकरण भूषण का मतलब हो गया व्याकरणों का सिद्धांत। भूषण का अर्थ सिद्धांत कैसे लिया गया ये मैं बताया कि भूषण का काम है आभूषित करना, सिद्धांत का भी काम है व्याकरण को विभूषित करना, इसलिए भूषण के शब्द के द्वारा यहाँ पर सिद्धांत अर्थ लिया जाता है। और सारह मतलब समझते हैं सारांश, संक्षेप में जो कोई बात कही जाती है, जो तत्व होता है, जो असली तत्व होता है उसको जो बताया जाता है उसको सार कहते हैं। तो व्याकरण भूषण सारा का मतलब हो गया कि व्याकरणों के सिद्धांतों का सारांश। इस तरह से इस पुस्तक का नामकरण किया गया। अब इस पुस्तक में है क्या ये हमें जानना जरूरी है। व्याकरण में बेटा दो अंश हैं, एक है शब्द विचार, दूसरा है अर्थ विचार। तो आप लोगों ने जो लघु सिद्धांत कौमदी या व्याकरण सिद्धांत कौमदी को देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, उसमें शब्द का विचार किया गया कि कोई शब्द कैसे बनता है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, कौन सी विभक्ति लगती है, उसमें क्या आदेश होता है, क्या आगम होता है, इस तरह से शब्दों के विचार होते हैं। और दूसरा ग्रंथ होता है व्याकरण का जिसमें कि अर्थ का विचार होता है। जैसे धातु का धातु है, भू धातु है, पठ धातु है, गम धातु है, तो उसका क्या अर्थ है। लकार है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, तो उसका क्या अर्थ है। सुप विभक्ति है, सुओ जस अम उत्सस, ये विभक्तियाँ जो हैं उन विभक्तियों का क्या अर्थ है। नाम प्रातिपदिक, प्रातिपदिक जैसे राम शब्द हुआ, कृष्ण शब्द हुआ, लता शब्द हुआ, बालिका शब्द हुआ, इस तरह से जितने भी प्रातिपदिक हैं उनका क्या अर्थ है। फिर समास का क्या अर्थ होता है, किस तरह से समास से अर्थ निकलता है, किस तरह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 15 प्रकरण हैं, और 15 प्रकरण में अर्थ का ही विचार किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि व्याकरण में दो अंश हैं, शब्द विचार और अर्थ विचार, तो इस पुस्तक में अर्थ विचार किया गया है। इसमें आपको कहीं भी शब्द की सिद्धि नहीं बताई जाएगी। इसमें ये नहीं कहा जाएगा इस सूत्र से ये, इस धातु से ये प्रत्यय आया, ये आदेश हुआ, ये सब नहीं बताया जाएगा। आपको खाली इसमें अर्थ बताया जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। उसी में बहुत सारे विचार होते हैं, अलग अलग दर्शन के हिसाब से, अलग अलग शास्त्र के हिसाब से अलग अलग मत होते हैं। इस पुस्तक में खास करके 3 शास्त्र के मत का उल्लेख मिलता है और उस पर विचार किया जाता है। एक तो न्याय दर्शन का जो सिद्धांत है उस पर विचार किया जाता है, दूसरा मीमांसा दर्शन का जो सिद्धांत है उस पर विचार किया जाता है, और अंत में वैयाकरण का जो सिद्धांत है उसका समर्थन किया जाता है। तो हर जगह खंडन नहीं किया गया है न्याय और मीमांसा का, जहाँ पर हमारे अनुकूल है माने वैयाकरणों के सिद्धांत के अनुकूल जहाँ पर है उसको जो है समर्थन किया गया है, और जहाँ पर हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है उसका खंडन किया गया। तो इस तरह से इस पुस्तक में हमें अर्थ विचार करना है, और उस अर्थ विचार करने के क्रम में न्यायिकों का भी मत देखना है, मीमांसकों का भी मत देखना है, और अपना भी मत जो है प्रस्तुत करना है। इस तरह से आपको मैंने एक आइडिया दिया कि इस पुस्तक में हमें पढ़ना क्या है। अब इस पुस्तक के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि आपने भट्टोजी दीक्षित का नाम सुना होगा, जिन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की, प्रौढ़ मनोरमा की रचना की, फिर शब्द कौस्तुभ की रचना की, बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। तो भट्टोजी दीक्षित चाचा थे और उनके भतीजे थे जिनका नाम था कौंड भट्ट। तो इस पुस्तक के रचयिता जो हैं वो कौंड भट्ट हैं, और इसमें आपको दो तरह की कारिकाएं मिलेंगी। जैसे शुरू में ही जब आप मंगलाचरण देखेंगे, इसमें दो तरह का मंगलाचरण है, एक तो है श्री लक्ष्मी रमनम नोमी से लेकर के, और श्री कौंड भट्ट कुर्वे हम वैयाकरण भूषणम, ये चार नंबर तक की जो कारिकाएं हैं ये एक टाइप की कारिकाएं होंगी। और दूसरी कारिका है फणि भाषित भाष्याभ्येहे। तो ये क्या चक्कर है, एक बार एक से चार तक संख्या जाती है और फिर एक से संख्या शुरू होती है। तो इसका मतलब समझिए क्या है कि भट्टोजी दीक्षित ने जिन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी बनाई, उन्होंने क्या किया था कि ये अर्थ विचार संबंधी कारिकाएं लिखी थी, और उसका उन्होंने जो है वैयाकरण भूषण कारिका नाम रखा था। कारिका जो है ना, हो सकता है कि पहली बार आप लोगों ने सुना हो, कारिका शब्द से घबराना नहीं है, ये शास्त्र में जो श्लोक होते हैं ना उसी को कारिका कहा जाता है। तो भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांतों को लेकर के ना बहुत सारे श्लोक लिखे थे, और उसकी उन श्लोकों की जो पुस्तक थी ना उसका नाम रखा उन्होंने वैयाकरण भूषण कारिका। इस पुस्तक में उन्हीं कारिकाओं का, उन्हीं श्लोकों का जो है ना व्याख्यान किया गया। तो इसलिए इसमें, इस पुस्तक में आपको दो लोगों की रचना मिलेगी, एक तो श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित की कारिकाएं मिलेंगी, और दूसरा कौंड भट्ट की जो है ना उस पर व्याख्या मिलेगी आपको। तो एक नंबर से लेकर के चार नंबर तक का जो मंगलाचरण है वो तो कौंड भट्ट का लिखा हुआ है, मतलब वैयाकरण भूषण सार ये जो पुस्तक है उसका ये मंगलाचरण है, और फिर एक नंबर से जो मंगलाचरण शुरू होता है फणि भाषित भाष्याभ्येहे, ये जो मंगलाचरण है ये भट्टोजी दीक्षित की जो लिखी गई थी ना वैयाकरण भूषण कारिका उसका वो मंगलाचरण है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ कि इस पुस्तक में वैयाकरण भूषण कारिका की कारिकाएं हैं और कौंड भट्ट ने उस पर अपनी व्याख्या लिखी है। अब इस पुस्तक में सबसे जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए वो ये है कि कारिकाएं जितनी भी हैं वो आपको कंठ रहनी चाहिए। जैसे सूत्र अगर कंठ रहेगा, वृत्ति अगर कंठ रहेगी, तभी हम जो है ना सिद्धि कर पाएंगे, तभी आगे का हम शब्द विचार कर पाएंगे। उसी तरह से जब तक ये कारिकाएं आपको याद नहीं रहेंगी ना, तब तक आप जो है ना इस पुस्तक के बारे में विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका ये प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक इन कारिकाओं को आप याद करें। एक चीज़ और बता ही दूं आपको, इसमें आपको जो इस सेमेस्टर में, पहला जो सेमेस्टर आप लोगों का होगा उसमें तीन चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है धातुअर्थ निर्णय, दूसरा है लकारार्थ निर्णय, और तीसरा है सुबर्थ निर्णय। इसमें धातुअर्थ निर्णय जो है ना वो बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर उसको पढ़ने पढ़ाने के चलेंगे तो एक ही प्रकरण में जो है आपका पूरा समय बीत जाएगा, और फिर भी शायद वह खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम ये करते हैं कि उल्टा क्रम से चलते हैं, पहले जो है ना तीसरा जो प्रकरण है सुबर्थ निर्णय, पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरा प्रकरण जो होगा लकारार्थ निर्णय उसको पढ़ेंगे, फिर पहला जो प्रकरण है धातुअर्थ निर्णय उसको पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। उसको लास्ट में इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रकरण है, तो जितना पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं और जितना छूट जाएगा छूट जाएगा। असल में ये जो है कम से कम एक साल के लिए सिलेबस है, जिसको कि 6 महीने में बांटा गया है, और उन 6 महीने में भी जो है लॉकडाउन के कारण जो है और पढ़ने पढ़ाई में कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी जो है पहली जो कारिका है धातुअर्थ निर्णय की उसको तो हम पढ़ ही लेंगे। उसके बाद हम उल्टे क्रम में शुरू करेंगे, सुबर्थ निर्णय से शुरू करेंगे। तो मंगलाचरण और धातुअर्थ प्रकरण की जो पहली कारिका है उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद हम सुबर्थ निर्णय से शुरू करेंगे। वो मैं अपने ऑडियो में आपको बता दूंगा कि कब जो है हम सुबर्थ निर्णय शुरू करने वाले हैं। तो आज हम मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं, इतनी सारी भूमिका बता देने के बाद। इसमें मंगलाचरण में श्री लक्ष्मी रमनम नवमी गौरी रमन रूपिणम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदे तद विवर्तते। श्री लक्ष्मी, आपने अगर वेद मंत्र थोड़ा पढ़ा होगा सुना होगा तो उसमें एक आता है श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, माने श्री और लक्ष्मी ये दो पत्नियां हैं जिनकी, वो कौन है तो भगवान विष्णु हैं। तो श्री लक्ष्मी रमनम, रमन का अर्थ है यहाँ पर पति, तो श्री और लक्ष्मी नाम की जो भगवती हैं देवी हैं उनके जो रमन हैं माने पति हैं उनको नवमी, नवमी माने प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। गौरी रमन रूपिणम, गौरी आप जानते ही हैं पार्वती, और उनका जो रमन है, रमन माने पति और रूपी माने वो जो विष्णु हैं वो कैसे हैं, तो गौरी रमन रूपी हैं माने उनका रूप जो है शिवजी के रूप जैसा ही है, दोनों में कोई भेद नहीं होता। हरि हरयोर अभेदः, हरि कहते हैं विष्णु को और हर कहते हैं शंकर जी को, दोनों में अभेदः भेद नहीं होता, भेद का अभाव होता है। यही बात बताने के लिए यहाँ पर गौरी रमन रूपिणम कहा, माने श्री लक्ष्मी के पति को मैं नमस्कार करता हूँ, और वो श्री लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु कैसे हैं तो गौरी रमन रूपिणम, गौरी रमन के रूप वाले हैं। फिर आगे है स्फोट रूपम यतः सर्वम जगत एतद विवर्तते। सर्वम जगत, जगत माने संसार, सर्वम जगत माने सारा संसार, यह सारा संसार जो है वो कैसा है तो स्फोट रूपम है। स्फोट रूपम शब्द पर थोड़ा गौर करिए, इसमें दो शब्द है, एक है स्फोट दूसरा है रूपम। तो स्फोट कहते हैं शब्द को और रूप कहते हैं अर्थ को। तो सारा सर्वम जगत जो है, सारा संसार जो है वो शब्दात्मक है और अर्थात्मक है। इसको दो तीन शब्दों से कहा जाता है, इस संसार में दो ही चीज़ें, या तो शब्द है या अर्थ है, इसको हम शब्दात्मक जगत और अर्थात्मक जगत कहेंगे। दूसरे शब्द से कहना चाहें तो नाम रूपात्मकम जगत कहेंगे, नाम माने शब्द होता है, रूप माने अर्थ होता है, और आत्मकम माने स्वरूप वाला, शब्दात्मक माने शब्द स्वरूप वाला, अर्थात्मक माने अर्थ स्वरूप वाला। तो इसको स्फोट रूपात्मक जगत भी कह सकते हैं, नाम रूपात्मक जगत कह सकते हैं, शब्द अर्थात्मक जगत कह सकते हैं, और वाच्य वाचक आत्मक जगत भी कह सकते हैं। वाच्य माने अर्थ होता है और वाचक माने शब्द होता है। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आपको भी कोई पूछे कि इस संसार में कौन सी दो ही चीज़ें हैं वो बताइए, तो कह देना कि शब्द है और अर्थ है। तो जो हम बोलते हैं वो शब्द हो गया, और जो हम देखते हैं सुनते हैं सूंघते हैं छूते हैं, हैं ये ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है वह जो है वह अर्थ है। तो वह जो भगवान विष्णु हैं, जो गौरी रमन रूपी हैं माने शिवजी के रूप से अभिन्न हैं, शिवजी के रूप धारण भी वही करते हैं, उन भगवान विष्णु से ये सारा का सारा जो जगत है, शब्द शब्दात्मक जगत और अर्थात्मक जगत, वह विवर्तते, विवर्तते माने प्रादुर्भूत होता है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं अर्थ बता देता हूँ। श्री लक्ष्मी रमनम नौमी माने श्री और लक्ष्मी के रमन माने पति को मैं नौमी माने प्रणाम करता हूँ। गौरी रमन रूपिनम, वो भगवान विष्णु कैसे हैं, तो गौरी रमन रूपी हैं माने शिव जी के रूप वाले हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्फोट रूपम जतः सर्वम जगत माने सारा जो ये जगत है वो स्फोट रूप है, माने शब्दात्मक जगत है और अर्थात्मक जगत है। एतद विवर्तते, यह जो जगत है वह विवर्तित होता है माने प्रकाशित होता है, प्रादुर्भूत होता है। अब यहाँ एक बात और जान लीजिए आप कि किसी से कोई वस्तु जो उत्पन्न होती है ना, वो दो तरह से होती है। एक तो नया उत्पन्न होना और दूसरा कि जो पहले से है ही वह उसको और वह सामने आ जाना, वह प्रकाशित हो जाना। तो यह जो संसार है यह संसार विवर्तित होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है लेकिन अभी मैं शास्त्रार्थ की चर्चा नहीं करना चाहता, अभी तो यही कह लीजिए कि सारा जगत जो है विवर्तित होता है माने प्रकाशित होता है। है क्या कि आपने सुना होगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य होता है और सारा जगत जो है मिथ्या है माने झूठा है। तो यह जो दिखाई दे रहा है, जो भी संसार है या सुनाई दे रहा है, जो भी पूरा का पूरा यह संसार है, ये सारा संसार मिथ्या ही है। वास्तविक में क्या है, भगवान विष्णु हैं या वो शिव जी हैं या उनको ब्रह्म कह लीजिए, वो वास्तविक में है और यह संसार तो मिथ्या है। तो जो मिथ्या होता है ना वह कभी भी उत्पन्न नहीं होता, मिथ्या का आभास होता है। तो इस तरह से अगले पाठ में जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन प्रकार से कैसे उत्पत्ति होती है, कोई भी चीज़ तीन तरह से कैसे दिख पड़ती है। तो आज संक्षेप में एक बार और अर्थ करके पाठ को रोकता हूँ कि श्री लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गौरी रमन रूपी हैं माने शिव जी के स्वरूप वाले भी हैं और जिनसे पूरा का पूरा यह शब्दात्मक और अर्थात्मक संसार विवर्तित होता है माने प्रकाशित होता है, प्रादुर्भूत होता है। आज का पाठ यहीं रखते हैं, आगे का पाठ आगे बताऊंगा। आपको प्रतिक्रिया देनी है कि समझ में आया कि नहीं आया, ग्रुप में जरूर लिखिएगा कि गुरुजी समझ में आया, और नहीं आया तो वो भी लिखिएगा। धन्यवाद।